दलित नारियों की संघर्ष गाथा। हिंदी भाषी वर्ण प्रदेशों में आदिवासियों के जीवन पर बहुत कम लिखा गया है। महाश्वेता देवी, गोपीनाथ महंत आदि लेखकों ने आदिवासी जीवन को अपने लेखन में उघाड़ा और इस कड़ी में महाश्वेता देवी से प्रभावित होकर रमणिका गुप्ता ने बिहार के आदिवासी जीवन को आधार बनाकर दो छोटे उपन्यास की रचना की है। ये उपन्यास है मौसी और सीता। जैसा कि उपन्यासों के शीर्षक से स्पष्ट है कि उपन्यास न केवल आदिवासी जीवन पर हैं, वरन मानव समाज में दोहरे तिहरे शोषण का शिकार आदिवासी स्त्री को इन उपन्यासों में नायिका का दर्जा दिया गया है। रमणिका गुप्ता की चर्चा अब तक एक कवित्री, युद्धरत आम आदमी की संपादिका व हजारीबाग क्षेत्र में आदिवासी व मजदूर वर्ग में नेताजी की रही है, लेकिन इन उपन्यासों के प्रकाशन के साथ उनका उपन्यासकार रूप भी सामने आया है और इन उपन्यासों को पढ़ते हुए लगता नहीं कि ये लेखक की इस विधा में पहली रचनाएं हैं, हालांकि उनकी कहानियां छपकर चर्चित हो चुकी हैं। इन दोनों उपन्यासों में सीता 1996 में छपा और मौसी 1997 में। दोनों ही उपन्यासों में लेखिका स्वयं मौजूद है, एक में रेणुका जी के रूप में व दूसरे में वृत्तांतकार के अपने मय रूप में उनकी उपस्थिति उपन्यासों में दर्ज है। छपा भले ही बाद में हो, लेकिन प्रकाशकीय सूचना के अनुसार मौसी लेखिका का प्रथम उपन्यास है। लेखिका की ट्रेड यूनियन गतिविधि का कर्म क्षेत्र कोयलांचल है, इसलिए बिहार की कोयला खदानों के मजदूरों का संघर्ष उनकी रचनाओं में उघड़ कर सामने आया है। मौसी और सीता भी कोयलरी क्षेत्र के मजदूर आदिवासी स्त्रियां हैं, जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में जमकर संघर्ष किया है और समाज में अपने लिए सम्मानपूर्ण स्थान बनाया है। इन उपन्यासों में चरित्रों का व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन साथ साथ चलता है। संघर्षरत लोगों का व्यक्तिगत जीवन सुविधा संपन्न लोगों की तरह प्राइवेट नहीं होता। मौसी छोटा नागपुर के जंगलों से काम की तलाश में कोयला खदानों में आई है। इस उपन्यास का आरंभ बड़े नाटकीय ढंग से होता है, जब मौसी का गोद लिया बेटा मोहना, जो वैसे उसका भतीजा है, अपने बुआ को पटक पटक कर थप्पड़ घूंसों से यह कहते हुए मार रहा कि मैं अपने लिए दुल्हन खोजूं या फूफे के लिए दूल्हा। जीवन में किसी से भी न दबने वाली मौसी बिना प्रतिकार किए बेटे के हाथों मार खाए जा रही थी। इस नाटकीय दृश्य की पृष्ठभूमि यह है कि बुआ ने कई बार घर बदले और कई फूफा भी, खुशी से नई व्यवस्था में। बूढ़े मौलवी से उसकी राय के विरुद्ध उसे ब्याह गया उसका बेटा पालने के लिए। बूढ़ऊ भगवान सिंह भी गाय की तरह उसकी रस्सी खोल ले गया, क्योंकि वह समाज में प्रभुत्वशाली लोग थे। लेकिन जहां मौसी का दिल मिला था मौलवी के बेटे यासीन से या अब माधव से, जो उनके हम उम्र थे, उनका साथ समाज को मंजूर न था। माधव इसलिए सबको चुभता है क्योंकि वह दुसाध है। मोहना को बुआ के मर्द पर करने पर ऐतराज नहीं है, बशर्ते कि वह माझी या मुंडा होता, लेकिन दुसाध का संग उसे चुभता है। मौसी का सवाल है, क्यों छाती पर सांप लूटे लगत हो इन सवनी के, मोरा खुशी देख के। मौलवी साहब से निकाह हुआ कोयो नाय बोल ले, भगवान सिंह ले गेले फिर छोड़ भी दे ले, तबे को ना कुस्कुले। आइज जब माधो हमार संग रहे रगेज है, तो सब जात कुजात खोजे लगल है। मियाँ जात लगता था, बाबू साहब जात था, दुसाध के आदमी नाय होत है। इस उपन्यास में स्त्री और उस पर भी आदिवासी स्त्री के जीवन की व्यथा को कई कोणों से उभारा गया है। आदिवासी समाज में सेक्स संबंधी नैतिकता का स्वरूप अलग है, लेकिन इस नैतिकता में और बंधन चाहे कम हो, स्त्री को स्वतंत्र रूप से जीने या साथी चुनने का अधिकार यहाँ भी अबाध नहीं है। मौसी अपने यौवन के दिनों को याद करती है, जब वह लड़की लकड़ी बेचकर गुजर बसर करती थी। इसी उम्र में संयोग से ट्रक चालक सलीम से मुलाकात और प्यार हुआ, लेकिन उनका निकाह हुआ सलीम के बाप मौलवी साहब से, क्योंकि सलीम की माँ बच्चे को जन्म देकर चल बसी और बच्चे को संभालते संभालते मौसी को बूढ़े मियाँ को भी बीवी बनकर संभालना पड़ा और एक ही समय पर बाप बेटे से उसके शारीरिक संबंध रहे। बाद में सलीम ने किसी और औरत से शादी की और मौसी विधवा होकर गांव लौट गई और मोहना की देखभाल में लग गई। मौसी को अब कोयलरी के मजदूर नेता भगवान सिंह, तीन बेटियों के पिता विदुर औरत का साथ चाहिए, मगर शादी नहीं। इसलिए भगवान सिंह मिल से रिटायर हुए तो मौसी को नौकरी नहीं मिली, क्योंकि वह ब्याहता नहीं थी। नौकरी से जो पैसे मिले वह उसने रिश्तेदारों पर खर्च दिए और खाली हाथ होने पर सबने पीछा छुड़ा लिया। इस बीच हम उम्र माधव का संग मिला तो वह फिर से जी गई, लेकिन समाज ने माधव पर हमला किया और जान की खातिर वह परदेश चला गया। उसका मन भी फट गया था। भगवान सिंह को भी भतीजों ने लूटा तो लौटा पुनः मौसी के पास और मौसी ने कहा साथ रहने के लिए शर्त रखी दोनों के मजदूर बनने की, जिसे भगवान सिंह ने माना और दोनों अपना आश्रम बेचने के लिए चौक पर मजदूरों के कतार में खड़े हो गए। मौसी में रमणिका गुप्ता ने अपनी मजदूर वर्गीय विश्व दृष्टि से मौसी को मजदूर बनाकर उसे वर्ग सचेत बनाने में उसकी मुक्ति देखी है। स्त्री संबंधी समाज के नजरियों को उन्होंने उपन्यास में संवेदना से उघाड़ा है और समाज में व्याप्त जाति भेद को भी। दलितों को आदिवासी समाज में भी हीन समझा जाता है। इस बात को रेखांकित कर आदिवासी समाज पर ब्राह्मणवाद के प्रभाव को भी लेखक ने उघाड़ा है। सीता मौसी का अगला चरण है, अर्थात मजदूर बनने के बाद वर्ग चेतन जुझार मजदूर बनने का। शुक्रा, करमाली और सुमित्रा की चार बेटियों में से एक है सीता, जो परिवार संग रांची जिला के खूंटी गांव से 1948 में खटने के लिए केदला की कोयला खदान में आई है। इस खदान के मालिक हैं छोटा नागपुर क्षेत्र के राजा साहेब, जो अंग्रेजों के जाने के बाद संसदीय राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। राजशाही में यूनियन नहीं थी और ठेकेदारों, लठैतों, रंगदारों और महाजनों का राज था। यहाँ पर लेखिका का उपन्यास में परिचय मिलता है हजारीबाग की एक नेताजी के रूप में, जो कई लड़ाइयाँ लड़ चुकी हैं। सीता में रमणिका गुप्ता ने समाज का दस्तावेजी रूप में यथार्थ चित्र भी प्रस्तुत किया है, वह साथ ही कहानी शैली भी अपनाई है। उपन्यास में लेखिका किसी छद्म नाम से नहीं, स्वयं वृत्तांतकार के रूप में मौजूद है। यूनियन को संगठित करने की प्रक्रिया में वे सीता और उसकी बहनों के सानिध्य में आती हैं, जिनकी देह लिशक्ति थी, फिर तो मजदूर के साथ उड़ जाने के संदर्भ से यूनियन की जरूरत का एहसास कोयलरी मजदूरों को होता है। सीता शादीशुदा थी, लेकिन मर्द शराब अधिक पीने लगा और सीता से अलग भी हो गया। इसी बीच यासीन से सीता की निकटता बढ़ने लगी और वे दोनों एक साथ रहने लगे। बाद में आदिवासी रिवाज से उसने सीता से शादी भी कर ली, लेकिन उसने उसका नाम नौकरी में पत्नी के रूप में दर्ज नहीं किया, इसलिए उसे बच्चे होने पर मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिले। यासीन उसे धोखा दे रहा था। ट्रक और जमीन का मालिक होकर उसने दूसरी शादी भी कर ली। सीता यूनियन में सरगर्म हिस्सा लेने लगी और 1943 में खदानें सरकारी पक्ष में आने पर सीता का परिवार को भी और आंदोलन में हेराफेरी से बहुत से और पुराने लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। लेकिन इस आंदोलन में सीता का यूनियन कार्यकर्ता का कर्मठ रूप उभर कर सामने आ जाता है। फिर यही सीता यूनियन में भी जुझारू संघर्ष करती है और व्यक्तिगत जीवन में भी यासीन द्वारा अपनी और बच्चे की हत्या की साजिश विफल करती है। 1958 से शुरू उपन्यास की कथा 1984-85 तक पहुंच जाती है। MCC और IPF जैसे राजनीतिक संगठनों को भार और उनकी राजनीतिक भूमिका पर भी लेखिका अपनी दृष्टि से विचार प्रस्तुत करती है। नक्सलाइटों का जिक्र भी है। सीता व उसकी बेटी पर पड़ने वाले सामाजिक दबावों व सीता द्वारा इन दबावों का सशक्त प्रतिरोध उपन्यास में अंकित हुआ है। विभिन्न वामपंथी गुटों के प्रभाव में मजदूर संगठनों के आपसी विवाद व सशस्त्र टकराव का आकलन भी उपन्यास में हुआ है। सीता के अपने मजदूर संगठन के भीतर ही स्त्री विरोधी प्रवृत्तियां भी लेखिका ने ईमानदारी से चित्रित की हैं। सीता के इन गुणों के चित्रण के साथ साथ लेखिका ने उसके मुक्तिकामी व्यक्तित्व के एक अंतर्विरोध को भी अंकित किया है। वह व्रत उपवास भी रखती है, छठ भी मनाने लगी है, भले ही पति को सजा दिलवाने के लिए ही, लेकिन लेखिका को विश्वास है कि एक दिन उसका इन कर्मकांड व अनुष्ठानों से मोह भंग होगा। सीता के प्रति लेखिका के मन में अटूट आस्था है, क्योंकि अब वह अपने से बाहर खड़ी सीताओं के लिए लड़ने लगी है। सीता उपन्यास का कोई औपचारिक अंत नहीं है। जीवन में संघर्ष ही होना है, सक्रिय होना है, इसी नोट पर उपन्यास समाप्त होता है। मौसी और सीता दोनों उपन्यासों में लेखिका व मजदूर नेता रमणिका गुप्ता का मुख्य सरोकार मजदूर वर्ग व स्त्री की मुक्ति का है। चूंकि समाज में किसी भी वर्ग या व्यक्ति की मुक्ति बिना संघर्ष किए संभव ही नहीं है, इस तथ्य व सत्य को मौसी व सीता के चरित्र के माध्यम से लेखिका ने बखूबी चित्रित किया है। दोनों ही उपन्यासों में लेखिका ने सामाजिक यथार्थ के चित्रण के लिए पारंपरिक औपन्यासिक शिल्प के साथ साथ दस्तावेजी शिल्प का भी प्रयोग किया है। विशेषतः सीता उपन्यास की संरचना में 1968 से लगभग 1998 तक के 30 वर्ष पहले समय में बिहार के कोयलरी क्षेत्र में आए परिवर्तनों को रेखांकित करने में लेखिका ने स्वयं को उपन्यास के एक चरित्र के रूप में भी प्रस्तुत किया है। यद्यपि इस दौर के अनेक राजनीतिक विश्लेषण में कुछ विवाद भी हो सकता है, विशेषतः नक्सलवादी आंदोलन के चित्रण में। वास्तव में नक्सलवादी आंदोलन का कहीं भी कोई एक प्रमाणिक स्वरूप उपलब्ध नहीं है। दर्जनों गुटों में बटा यह आंदोलन कहीं पर आदर्शों से मंडित है तो कहीं पर पतनशीलता से खंडित। रमणिका गुप्ता के कार्यक्षेत्र में इस आंदोलन की क्या भूमिका रही, इसका चित्रण उनकी दृष्टि से इस उपन्यास में हुआ है। कुल मिलाकर रमणिका गुप्ता की ये दोनों उपन्यास हजारीबाग क्षेत्र की आदिवासी जनजीवन, उनके संघर्षों, विशेषतः आदिवासी स्त्री के संघर्षों और समाज में व्याप्त अंतर्विरोध, पिछले 30 वर्ष के सामाजिक परिवर्तनों का एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं। आदिवासी हमारे समाज के दलित व उत्पीड़ित वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इस समाज के भीतर भी जातिगत उच्चता व निचता का भाव बोध हो गया है, जैसा कि मौसी व माधव दुसाद के संबंध में उजागर हुआ है। यह जनवादी संघर्षों में शामिल लोगों के लिए चिंता का विषय है। समाज के तमाम संघर्षशील तबकों, दलितों, आदिवासियों, उत्पीड़ित स्त्रियों, मजदूरों, किसानों व निम्न मध्य वर्ग में व्यापक एकता हो, ताकि एक दूसरे से जुड़कर तमाम संघर्षशील जनता, जिनमें दलितों व आदिवासियों की मुक्ति भी शामिल है, की मुक्ति का लक्ष्य हासिल हो सके। इसकी कुछ जरूरत तो इन उपन्यासों में नजर आती है, लेकिन पूरी शिद्दत से ये जरूरत नहीं उभर पाती। फिर भी बिहार की आदिवासी स्त्रियों के संघर्षों की व्यथा कथा कहने में ये उपन्यास सफल है।